بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. گذشتہ نشست میں ہم لا آف اٹریکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کی پریامبل کے طور پر تو کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھیں کہ اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو وہاں جو اٹریکشن ہے وہ دو اپوزٹ چیزوں میں ملتی ہے. اس کی میں نے اگزامپل میگنیٹ کی دی تھی کہ میگنیٹ کے ہر میگنیٹ کے دو پول ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ. دو میگنیٹ ایک دوسرے کے قریب اگر ہم رکھیں تو دونوں میگنیٹس کے نارتھ پول اگر ایک دوسرے کے قریب جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو ایکسپیل کرتے ہیں، وہ ریپیل ہوتے ہیں وہاں سے. لیکن اگر ایک میگنیٹ کا نارتھ پول اور دوسرے میگنیٹ کا ساؤتھ پول ہو تو وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. تو سائنس کا لا آف اٹریکشن مختلف ہے، اور جس لا آف اٹریکشن کا ذکر اس سوال میں تھا وہ اس سے مختلف ہے. ہیومن سائیکالوجی میں لا آف اٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہماری سوچ نگیٹو ہے تو ہمارے ارد گرد جتنی نگیٹو چیزیں ہیں وہی ہماری طرف راغب ہوں گی، اور اگر ہماری سوچ پازیٹو ہے تو ہمارے ارد گرد جتنی پازیٹو چیزیں ہیں وہ ہماری طرف راغب ہوتی ہیں. یہ سائیکالوجی میں لا آف اٹریکشن جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے. یہاں عام طور پر بات ہوتی رہتی ہے روحانیت میں جو اولین سبق دیا جاتا ہے، جہاں ہم جا کے ٹریننگ کے لیے بیٹھتے ہیں روحانیت کی تعلیم کی، تو ہمارے مرشد جو پہلا سبق ہمیں دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ اپنے قلب کو بالکل صاف کر لو، اور قلب کو صاف کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ سوچ کو ہم پازیٹو کر لیں اپنی. تو جب ہم سوچ اپنی پازیٹو کرتے ہیں تو ہماری نظر جاتی ہی صرف پازیٹو چیزوں پر ہے، نیگیٹو چیزوں کو ہم دیکھتے ہی نہیں. ہمارے یہاں جو زندگی میں ہمیں سب سے بڑی دقت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ روحانیت یہ کہتی ہے کہ مخلوق سے پیار کرو. اس میں صرف انسان شرط نہیں ہے بلکہ مخلوق کا کہا جاتا ہے کہ مخلوق سے پیار کرو. اس میں اللہ تعالی کی دوسری تخلیقات بھی ہیں. اب ہر ایک سے پیار کیا نہیں جا سکتا کیونکہ میرے اندر تو بہت سے جذبے پل رہے ہیں. کوئی آدمی مجھ پر اگر تنقید کر رہا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی پازیٹو جذبہ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ میں اس سے دور بھاگوں گا اور دل میں کوئی زیادہ اس کے لیے میرے وارمتھ نہیں ہوگی. कोई आदमी अगर मेरे साथ झूठ बोल देता है और मैं उस झूठ को डिस्कवर कर लेता हूं लेटर ऑन, तो मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि कुछ और जज्बात पैदा होंगे। कोई आदमी मुझे धोखा दे देता है तो मेरे दिल में उसके लिए कोई मुस्बत ख्याल नहीं रहेगा। लेकिन रूहानियत ये कहती है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ वो एक आध कोई आदत बुरी अपना लेता है। तो बुरा इंसान नहीं है बल्कि उसकी कोई आदत बुरी है। तो इंसान से प्यार किया जाना चाहिए, ये रूहानियत का सबक है। अब वो हो नहीं सकता ताबकते के मेरा दिल सफाई होने के बाद कुछ, मेरा कल्ब सफाई के बाद उसकी सतह इतनी चिकनी हो जाए कि उस पर कोई चीज जमने ही ना पाए, मुझे याद ही न रहे कि किस शख्स ने मेरे साथ झूठ बोला था, किसने मुझे दगा दिया था, किसने मुझे नुकसान दिया था। ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि मैं हर एक से प्यार कर लूं, जब ये पॉजिटिव चीज आ जाएगी। तो उसमें मेरी सोच का पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी हो जाएगा। आप किसी फकीर को कहीं डीप डाउन उसके अंदर झांकिए, तो आपको कुछ अजीब सी चीजों का सामना होगा। आप तवज्जो दिलाइए कि फलां साहब के पास मैं गया था, वो तो आपको गालियां दे रहे थे, तो बजाय इसके कि सामने से उसका वो नेचुरल जवाब आए जो हम सब देते हैं कि वो खुद बुरा है इसलिए मुझे बुरा कह रहा है, फकीर का जवाब इसके बिल्कुल बरक्स होगा कि वो तो बड़ा भला आदमी है, शायद कहीं मुझे पता नहीं चला मैंने उसे दुख दे दिया है जिसकी वजह से वो मुझे बुरा कह रहा है, वो ठीक कर रहा है। ये फकीर का रवैया कुछ अरसे के बाद ये हो जाता है। उसकी वजह यही है कि वहां सोच पॉजिटिव है, तो उसके इर्द गिर्द जितनी पॉजिटिव चीजें हैं सिर्फ वही उसको अट्रैक्ट कर रही हैं, या वो उन्हें ही अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव सोच की वजह से। तो यूं रूहानियत में जोर इस बात पर दिया जाता है कि पहला सबक ही यही है कि आप अपने कल्ब को साफ कर लीजिए, आलाइशों से पाक कर लीजिए। और कल्ब आलाइशों से पाक सिर्फ उस सूरत में होगा जब हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। फकीर के यहां कोई आदमी उसकी कोई चीज चोरी कर लेता है तो हंसता हुआ एक ही जुमला कहता है, अगर आप तवज्जो दिलाएं कि उस आदमी ने तो आपकी फलां चोरी चीज चोरी कर ली, तो हंसता हुआ जवाब दे देगा आपको, जरूरतमंद होगा, उसको जरूरत होगी वो ले गया। नेगेटिव चीज वहां कहीं आएगी नहीं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आपकी अगर सोच नेगेटिव है तो आपके इर्द गिर्द के एनवायरमेंट में जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आपके अंदर नेगेटिव चीजें जमा होती चली जाएंगी। और अगर सोच आपकी पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगी आपके एनवायरमेंट में से सिर्फ पॉजिटिव चीजों को। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। किसी साहब ने सवाल किया है कि क्षमा बीनी का जिक्र आपने अपने किसी लेक्चर में किया था, क्षमा बीनी की मुख्तलिफ मशकों के हवाले से اگر مزید تفصیلات اور ان کے اوقات بتا دیں. یہ بڑی پرانی بات ہے, یہاں کئی سال پہلے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہوگا کہ کنسنٹریشن ڈیولپ کیسے کی جائے, کہ ہم اپنے ذہن کو ایک پرٹیکولر پوائنٹ پر مرکوز کر سکیں, اپنی توجہ کو ایک پرٹیکولر پوائنٹ پر مرکوز کر لیں. تو غالباً اس ضمن میں میں نے کہیں اس ایک ایکسرسائز کا ذکر کیا ہوگا کہ یہ جو شمع بینی ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے اپنی کانسنٹریشن کو امپروو کرنے میں. ہم اگر یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس لائق ہو جائیں گے کہ ہم جب چاہیں اور جہاں چاہیں اپنے توجہ مرکوز کر دیں. اس کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے 10 فٹ دور موم بتی جلائی جائے اور اس کے شعلے پر نظر رکھی جائے, تو اس کو ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ اس کو غور سے دیکھنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ 10-15 دن کی محنت کے بعد ہم اپنے انوائرمنٹ سے کٹ جاتے ہیں, جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے اس سے کٹ جائیں گے اور ہمیں صرف اور صرف موم بتی کا وہ شعلہ نظر آئے گا. اس کا دوسرا طریقہ ایک اور استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک گتے کا اسکوائر پیس لے لیں, سے 1x1 کا, اس کو اپنے سے 10-12 فٹ دور رکھ کے اس کے پیچھے ایک موم بتی جلا دیں اور موم بتی کے شعلے کو اس پن ہول میں سے دیکھنے کی کوشش ہم کریں. یوں ہماری توجہ وہاں مرکوز ہونے لگے گی اور اتنی مرکوز ہو جائے گی کہ ہم اپنے ماحول سے کٹ جائیں گے بالکل, ہمیں یہی یاد نہیں رہے گا کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں. تو وہ توجہ مرکوز کرنے کا دو ہی میرے علم میں تو دو طریقے ہیں شمع بینی میں, باقی ایکسرسائز کے علاوہ ہیں. تو وہ ہم اگر ان دو طریقوں کو استعمال کر کے کرنا چاہیں, لیکن یہ سپروائزڈ ایکسرسائز ہیں ساری, ادروائز اس میں امکان یہ ہوتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی پہ وظیفے کی رجعت ہو گئی, یا عرف عام میں ہم سنتے ہیں کہ وظیفہ الٹ گیا بندے پر تو وہ پاگل ہو گیا, وظیفہ نہیں الٹتا. ہوتا یہی ہے کہ ہم کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوشش ہماری درست سمت میں اگر نہیں ہے تو ہمارے دماغ کے وہ سیلز بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے جو نہیں ہونے چاہیے اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے, ہمارے یہاں جو پیر صاحبان ہیں یا دوسرے لوگ جہاں کہیں لوگ جاتے ہیں اپنے مسائل لے کے, عام طور پر ہمیں سننے میں یہ ملتا ہے کہ اس پہ جادو کر دیا ہوا ہے کسی نے, اس پہ تعویذ کر دیے ہوئے ہیں, اس پر کوئی عمل کر دیا ہوا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم کسی ایسے آدمی کے پاس گئے ہیں جو بے لوس ہے, جس کو غرض نہیں ہے, وہ آپ کو صحیح جواب دے دے گا کیونکہ اس کو غرض اس کی کوئی وابستہ نہیں. اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب جہاں کہیں جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے ہم, وہ صاحب کبھی آپ سے اگر بے لوس ہیں फकीर आदमी है, तो आपके लिए दुआ करने के लिए तो शायद उसे आपके नाम की जरूरत हो, वो पूछ ले कि आपका नाम क्या है। लेकिन याद नहीं रखेगा वो आपको, ना आपकी शक्ल याद रखेगा ना आपका नाम याद रखेगा, क्योंकि ना वो आपसे मिलने का मुतमन्नी है, ना उसको ये गर्ज है कि आप दुनियावी तौर पर क्या पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, आप कितने दौलतमंद हैं, क्योंकि उसने ना आप अपना कोई काम कहना है ना आपकी दौलत से उसको कोई गर्ज है, तो वो क्यों याद रखे आपको। तो दुआ के लिए तो जरूर ये कह देगा कि आपका नाम क्या, पूरा नाम बता दीजिए, लेकिन याद नहीं वो रखेगा। तो ऐसे ही अगर किसी आदमी के पास जाएंगे तो आपको वो बता देगा कि कोई जादू नहीं हुआ आप पे, ना कोई किसी ने तावीज किया, ना कोई आप पर अमल हुआ हुआ है। ये दर हकीकत सिर्फ बात इतनी है कि फॉर सम रीजन आपकी बॉडी केमिस्ट्री चेंज हो गई है, और बॉडी केमिस्ट्री चेंज होने से आपके जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं रहे जैसे होना चाहिए नॉर्मल आदमी के। फॉर इंस्टेंस, मैं ऐसी मिसाल देने के लिए आपसे कह रहा हूं, एक आदमी है जो मेहनत करता है, गर्मी में बैठा रहता है, पानी नहीं पीता, अब उसको पसीना भी आता है, मेहनत भी कर रहा है लेकिन पानी नहीं पीता। तो जब वो कई साल ये अमल जारी रखता है अपना, तो होगा क्या कि उसकी बॉडी केमिस्ट्री तब्दील हो जाएगी। एक शिकायत आप अक्सर सुनते हैं कि साहब कोई जिन रात को मेरे सीने पे चढ़ के बैठ जाता है, मेरे सीने पे बोझ पड़ता है, सांस रुकने लगता है। अगर आपने सच्चाई देखनी है तो ये देखिए कि उन साहब से पूछिए कि आप कितने लंबे अरसे से पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो आपको हैरत होगी कि हर आदमी आपको ये जवाब देगा कि एक लंबे अरसे से पानी में बहुत कम पीता हूं। तो उससे कहिए कि ये तो मजाक की बात है, कि ये तो बहुत सख्त जिन है जिसने आप पे कब्जा कर लिया, तो ये जिन जो है इसे हाइड्रोफोबिया है, पानी से डरता है, तो आप 9 गिलास रोज के पीना शुरू कर दीजिए, 3 दिन में जिन डर के भाग जाएगा, 3 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। इसी तरह एक आम कंप्लेंट आपके पास आएगी कि साहब मेरे कानों में कोई बोलता है, आवाजें आती हैं मुझे, कभी तजर्बा तो कीजिए। आप उसे पूछिए कि ये बताइए कि आप मीठा बहुत कम खाते हैं या नमक तेज खाते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में ये कैफियत पैदा हो जाएगी। एक आदमी मीठा छोड़े हुए है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, नमक खा रहा है, उसके दिमाग के कई सेल वो बेदार हो जाएंगे जो आमतौर पे होते नहीं, तो उसको यूं लगेगा कि उसके कान में सांसा की जो आवाज आती है वो अल्फाज हैं कोई, हालांकि वो सिर्फ होगा क्या कि वो सेल उसके एक्टिवेट हो गए हैं, तो बजाय 30 dB के शायद वो 28 dB पर सुनने लग गया है। ह्यूमन एयर ईयर जो है हमारा वो 30 dB की फ्रीक्वेंसी की आवाज को सुन पाता है, इससे कम फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन पाता, जबकि कुत्ता 10 dB पर सुन लेता है। अब उसमें 1-8 dB का अगर फर्क पड़ गया है तो उसको वो आवाजें सुनाई दे रही जो आम आदमी को नहीं देती, तो वो कहता है कि जी मेरे कान में कोई आके जिन बोलता है, तो उससे आप ये पूछ लीजिए और उसे ये कहिए कि ऐसा करें कि नमक कम कर दे अपनी खुराक में और मीठा खाना शुरू कर दे, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा वो। लोग घुटनों की शिकायत करते नजर आते हैं कि सब किसी ने तावीज कर दिए। मैं बहुत से लोगों के पास गया तो मुझे तो यही बताया गया है कि तुम पर जादू कर दिया, तावीज कर दिए, इसलिए घुटने दर्द करते हैं कि तुम चल ना सको। वो लोग जो लंबे अरसे तक चाय बगैर चीनी के पीते हैं, उसमें बिल्कुल नहीं डालते, उनको आमतौर पर घुटनों की दर्द शुरू हो जाएगी। अब वो मेरे जैसे के पास कोई आ गया, मैं तो बेनिफिट उसका ले लूंगा, तो मैं चीनी पढ़ के दूंगा कि ये चाय में डाल के पी लिया कीजिए, लाइए यहां 50,000 रुपया रखिए, आपके जादू तोड़ दिया मैंने। तो वो चीनी ले गए, चाय में डाल के पीनी शुरू कर दी, घुटने ठीक हो गए। तो शाह साहब की वाह वाह हो जाएगी कि शाह साहब बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं। कुछ भी नहीं है, ये इंसान की अपनी बॉडी केमिस्ट्री का खेल है। हम अपनी हरकतों से बॉडी केमिस्ट्री को अपसेट कर देते हैं और नतीजा ये होता है कि फिर शाह साहब की ऐश हो जाती कि लोग आते हैं जी मेरे ऊपर ये हो गया, और मैं भी फौरन कहता हूं कि हो तो आप पे बड़ा सख्त जादू हुआ हुआ है। यूके में एक साहब आए मेरे पास, उस वक्त के नेशनल असेंबली के स्पीकर के रिश्तेदार थे और खासे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सियालकोट के, उनके लिवर का मसला था कि हेपेटाइटिस सी ने डैमेज कर दिया था लिवर। जो ह्यूमन लिवर है जिस्म में, उसके अंदर मुख्तलिफ चैनल्स बने हुए हैं ऐसे। तो होता यह है कि जब इंसान को हेपेटाइटिस सी होता है तो ये चैनल्स डैमेज हो जाते हैं और वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो उनके बंद होने से लिवर डिस्ट्रॉय होने लगता है, शुरू में मेल फंक्शन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना बंद कर देता है, हत्ता कि इंसान रुखसत हो जाता है दुनिया से। तो वो चैनल्स बंद होते हैं उसके सारे। तो ये साहब आए तो मैंने इनको देखा, बहरहाल जो करना था कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप 7 संडेज रेगुलरली आ जाइएगा, मैं यही यूके में हूं। वो 6th संडे ही जवाब यह आया दुआ में कि इनको अब दम की जरूरत नहीं, इनका लिवर ठीक हो गया बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि जाइए आप ठीक हो गए। अब वो साहब मुझे गौर से देख रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि उनके जहन में क्या चल रहा है इस वक्त। इस आदमी ने ना मेरे जिस्म पर हाथ रखा, ना इसने मुझे कुछ खाने को दिया, ना इसने कोई और काम किया, मुझे कह रहा मैं ठीक हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कर लें कि जिन जिन डॉक्टर्स के पास आप गए थे जिन्होंने इलाज किया था उन्हीं के पास चले जाएं और उनसे कहिए आपके टेस्ट करके आपको बता देंगे लिवर आपका ठीक है या नहीं। तो कहने लगे जी कुछ तो पाकिस्तान में थे, वहां से ठीक नहीं हुआ तो मैं यहां आके इलाज करा रहा था। तो आई सेड आप जान चाहे चले जाइए, जाके करा लें, ठीक हैं आप। वो अल्लाह का नेक बंदा पहले इधर आया पाकिस्तान, यहां से टेस्ट कराए नेगेटिव थे, यूके में जाके टेस्ट कराए नेगेटिव थे। इतनी देर में संडे आ गया नेक्स्ट, वो फिर आ गए मेरे पास। कहने लगे जी वो टेस्ट तो सारे नेगेटिव आ गए लेकिन मेरे यहां दर्द होता है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं आपके यहां आपके दर्द तो कोई भी नहीं है। तो नहीं सब दर्द होता है। तो फिर नेक्स्ट संडे आए, वही कंप्लेंट थी कि दर्द होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे साथ क्या क्या खेल हो जाते हैं। बात करते तो जब वो नेक्स्ट संडे भी आके उन्होंने कंप्लेंट की तो एकदम मुझे ख्याल आया, मैंने कहा नहीं वो वाकई आपके दर्द होता होगा, तो मुझे नहीं पता चल रहा था दर्द है, लेकिन ये दर्द आपका जाएगा, एक बड़ा जोरदार तावीज में लिख के दे देता हूं, वो आप पेट पे बांध लीजिए, दर्द आपका हो जाएगा, लेकिन उसका हदिया 250 पाउंड है। कहेंगे कोई नहीं मैं 500 दे दूंगा। तो जिन साहब के साथ आए थे, मैंने एक पर्ची पे जो गाने का टूटा फूटा एक मुझे मिसरा याद था वो लिखा सफेद कागज पे, और उसको करके ताबीज बना के दिया कि जिसको अब आप पेट पे बांध लीजिए, बड़ा शरीरुल असर ताबीज है ये। तो जो साहब उनके साथ आए थे उनको मैं इशारा किया कि जरा आइए मेरे पास, तो उनसे मैंने कहा कि अब्बासी साहब आप ये इनके जो 250 पाउंड है जो दिए हैं ये लिफाफे में रखें, सील करके अपने पास रख लें, ये 3 दिन के बाद आएंगे और आपसे कहेंगे कि दर्द बंद हो गया, तो इनसे कहिएगा कि वो तावीज़ खोल के जरा पढ़ोगे लिखा क्या है। तो उसमें मैंने एक गाने के बोल लिखे हुए हैं, तो उसके बाद इनको 250 पाउंड ये दे दें और इनसे कहें कि आपका दर्द ये जाना नहीं था जब तक के ये सब ड्रिल ना होती आपके साथ। वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि उन साहब का दर्द तावीज बांधते ही दूर हो गया, और उन साहब ने कहा कि इसको खोल के पढ़ो देखो क्या लिखा, तो गाने के बोल थे उसमें, और वो 250 पाउंड दिए कि शाह साहब ने दिए थे कि ये वापस कर देना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम फकीर के पास जा रहे हैं तो फकीर तो इन चीजों से बहुत बुलंद है, वहां उसको कोई गर्ज नहीं वाबस्ता किसी से, तो आपको जिस आदमी की कोई गर्ज वाबस्ता नहीं होती वो आपको सही जवाब देता है, सही बात कह देगा। जो अक्सर औकात काबिल कबूल नहीं होती लोगों को तसल्ली नहीं होती उससे, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है। यही वो एक केमिस्ट हैं यहां पास ही, वो एक दिन आ गए तो कहने लगे मैं दुआ नहीं कराने आया, मैं तो एक आपको जरा देखने आया था। तो मैंने क्या हुआ के लिए यहां से लोग जाते हैं आपके यहां से, औरतें होती हैं आमतौर पर, तो मुझे वो देती हैं, उसके ऊपर आपने लिखा होता है कि विटामिन फलां विटामिन फलां, वो कहती हैं ये काले जादू का तोड़ है ये दे दो हमें। तो मैं तो ये जानना चाह रहा था ये क्या खेल क्या है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई बात ये है कि मैं तो कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की कि जादू वादू कुछ नहीं है, ये आपके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज पैदा हो गई हैं उसकी वजह से आपको ये हो रहा है, तो आप विटामिन खा लीजिए, उनकी तसल्ली नहीं होती कि हम 50 लोगों से होके आए हैं वो सब कह रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं। तो मैं अब अपना वक्त बचाने के लिए ये कर देता हूँ कि उनसे एग्री कर लेता हूँ कि हाँ आप पे जादू है, तो जादू का तोड़ ये ऐसा सख्त जादू है कि सिर्फ अंग्रेज ने इसका तोड़ बनाया है, तो जाइए जाके वहां से ले लीजिए और लेके खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। तो उस आदमी ने उसको एंजॉय बहुत किया, कहने लगे हम हैरान थे कि खाले जादू का ये क्या इलाज हो रहा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है। अब या तो मैं एक महीना लगाऊं उन्हें कन्विंस करने पर, कन्विंस उन्होंने फिर भी नहीं होना, फिर कहीं और जाएंगे और वो साहब कह देंगे आप पे जादू हुआ है, तो दूसरा ये है कि उन्हें मैं उसका सही हल बता दूं और साथ कह दूं कि ये काले जादू का हल है कर लीजिए जाके, तो मसला हल हो जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी अजीबोगरीब है। तो बात कहीं से कहीं निकल गई, कुछ और काम की बात कर रहे थे, किन फजूल बातों में पड़ गए आज। ये किसी साहब ने पूछा है कि किसी बीमारी, दर्द या मुश्किल का रात के इब्तदाई हिस्से में बढ़ जाना और तहज्जुद के वक्त कम हो जाना, फजर की नमाज तक इंसान का पुरसकून हो जाना, इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है या कुछ और? बात यह है कि बाज़ोकात हमारा स्टमक मेल फंक्शन कर रहा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और अगर ज्यादा शदीद है तो उससे दर्द भी होगी। जहां खाना हमने खाया आध घंटे के बाद हमारी दर्द हो जाएगी या गैस पैदा होगी, वो गैस जिस्म के किसी हिस्से में भी ट्रैप हो सकती है, खासतौर पर जो हमारी साइड हैं दोनों उनकी, थोड़ा सा बैक पे उस तरफ जाके ज्यादा ट्रैप होती है और दर्द बड़ी शदीद होती है उसकी। लेकिन जो जो वक्त गुजरता है तो वो हम कंफर्टेबल होने लगते हैं। अगर जिन साहब ने सवाल पूछा है एक पर्टिकुलर चीज मुझसे कही होती तो शायद मैं उसको सही डायग्नोज करके बता देता कि आपके साथ ये होता है। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जिन लोगों के गैस डेवलप हो जाती खाना खाने के आध पौन घंटे के बाद, तो वो जिस्म के किसी हिस्से में भी जहां ट्रैप होने लगती है वहां दर्द होती है हमें, जो 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 वक्त गुजरता है उसमें रिलीफ हमें मिलता जाता। यही वजह है कि आधी रात के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं हम, तहज्जुद तक बिल्कुल कंफर्टेबल हुए होते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज बताएं तो फिर मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इन्होंने पूछा है कि पढ़ाई किसी नमाज के वक्त पढ़ने को दें, इस पढ़ाई को फर्ज नमाज की अदायगी के फौरन बाद पढ़ना लाजिम है या उस नमाज के पूरे वक्त के खत्म होने तक इसको पढ़ा जा सकता है, जैसे हम जोहर की सुन्नतें अदा करें और हमारे पास काफी वक्त हो तो हम अपना वजीफा मुकम्मल कर सकते हैं, या फर्ज नमाज की अदायगी के बाद ही? आप इसको दोनों तरीकों से पढ़ लीजिए, फर्ज अदा करने के बाद पढ़ लें या पूरी नमाज मुकम्मल अदा करने के बाद फिर पढ़ लें, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता वक्त की पाबंदी जरूर होती है कि इतना इसे लेट ना करें कि वो स्ट्रेच होकर अगली नमाज का टाइम शुरू हो जाए, वो ना कीजिए। लेकिन आप पढ़ सकते हैं फर्ज नमाजों के बाद भी, आप पूरी नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं। ये एक साहब ने कहा है कि आपने अक्सर अपने लेक्चर में कहा है कि अपना दस्तरखान वसी करने से रब ताला राजी होता है। आपके कहने के मुताबिक मैंने अपने फ्रिज को मछली, गोश्त, फ्रूट से भर लिया, लेकिन कोई मेहमान नहीं आता, क्या रब ताला मुझसे नाराज है? ऑन ए लाइटर नोट, दस्तरखान की ये वुसत मेरे लिए नई है। अगर खाना तैयार करके घर में भिजवा दें अल्लाह के नाम पर किसी को, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये जरूर अर्ज करूंगा कि जिसको भी खाना हम भिजवाएं अल्लाह के नाम पर, इसमें बहुत एहतियात हम कर लें कि बहुत अदब और एहतराम के साथ उसको दें, उसको ये एहसास न हो कि मुझे अल्लाह के नाम पर खैरात दी जा रही है, ये یہ بہت لازمی ہے. اس کو ہم توازو کہتے ہیں روحانیت میں, کہ انسان کا متوازو ہونا بڑا ضروری ہے. اور توازو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی آدمی کی کوئی خدمت کریں تو بقول داتا صاحب کے ہم دوسرے کی خدمت اس طرح سے کریں کہ خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے ہم سے خدمت لے کر ہم پر کوئی احسان کیا ہے. متوازو ہونا بڑا ضروری ہے انسان کا. اسی طرح جب ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کھانا کھا کے جائے, تو یہ دسترخوان وسیع ہو جائے گا آپ کا. یہ انڈیا سے خط آیا, انہوں نے ایک شعر کے ذریعے کچھ میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اللہ آپ پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کو رب تعالیٰ خوش رکھے. تو سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ عبادت اور رب سے باتیں کرنے میں توجہ اور یکسوئی نہ بن پانے کی جسمانی اور روحانی کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں, کیسے ان سے نکلا جائے. میں اپنے رب کے سامنے بس رب ہی کا ہو کے بیٹھنا چاہتا ہوں, میرے لیے دعا کر دیجئے پلیز. عبادت میں انسان کی کانسنٹریشن دو ہی صورتوں میں لوز ہوتی ہے, ایک تو اگر انسان کو کوئی جسمانی تکلیف ہے, درد ہے, کوئی بیماری ایسی ہے جو بے چین رکھے ہوئے ہے انسان کو, تو یکسوئی پیدا نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر اپسٹ ہو, کچھ سال پہلے شاید یہی گفتگو کے دوران میں نے مفتی محمد حسن صاحب کا ذکر کیا تھا, جامعہ اشرفیہ مفتی محمد حسن صاحب ہی نے جاری کی تھی, بہت پرہیزگار آدمی تھے. تو ان کی ٹانگ میں ایسی تکلیف ہو گئی کہ ڈاکٹر نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی ٹانگ کاٹنا پڑے گی. تو ان کے عقیدت مند تھے, ان میں ایک عقیدت مند وہ تھے جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھاتے تھے اور بائی ٹریننگ سرجن تھے. انہوں نے اپنی سروسز والنٹیئر کی کہ جو آپ کی ٹانگ کی ایمپوٹیشن ہونی ہے وہ میں کر دیتا ہوں. تو مفتی صاحب کو خیال یہ آیا کہ یہ تو مجھے بے ہوش کریں گے, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بے ہوشی کی دوائی ہوتی ہے انستھیزیا, یہ کون سی میڈیسن پر بیسڈ ہے. تو سرجن صاحب نے انہیں بتایا کہ صاحب اس میں نشہ ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے ساری عمر کوئی حرام چیز استعمال نہیں کی, تو آخری عمر میں نشہ تو نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی کہ کوئی دلیل کام آ جائے, لیکن مفتی محمد حسن صاحب مانے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر میں نے ٹانگ نہ کاٹی آپ کی تو یہ پھر موت کا سبب بن جائے گی. تو مفتی محمد حسن صاحب نے کہا کہ اچھا, جب تم مجھے آپریشن تھیٹر پہ لٹاؤ اور تمہاری تیاری مکمل ہو جائے ٹانگ کاٹنے کی تو مجھے بتا دینا, میں وظیفہ شروع کر لوں گا اپنا, تو تم میری ٹانگ کاٹ دینا. تو ویسے ہی کیا ڈاکٹر صاحب نے. تو مفتی صاحب آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے وظیفے کا ورد کر رہے تھے اپنا. تو جب کافی دیر گزر گئی تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ کب کاٹیں گے ٹانگ میری؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو امپیوٹ کر بھی دی گئی, اب تو میں بینڈیج کر رہا ہوں, وہ بھی لاسٹ اس پر ہے. تو مفتی صاحب نے الحمدللہ کہا. اب یہ یکسوئی تھی عبادت میں جناب مفتی محمد حسن صاحب کی کہ ٹانگ کے کٹنے کا پتہ نہیں چلا. اب یہ وہی یکسوئی ایک ہی صورت میں آئے گی آپ کی کہ آپ جسمانی طور پر بھی کمفرٹیبل ہوں اور ذہنی طور پر بھی کمفرٹیبل ہوں, تو پھر آپ اپنی توجہ مرکوز کر لیں گے. جسمانی بیماریوں سے تو دور رہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں اور اس کے ساتھ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کافی ہو تو انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے. اصل پرابلم ہے پریشانی, جو ذہنی پریشانی ہے. ذہنی پریشانی ایک ہی صورت میں آدمی کو بودر کر پائے گی کہ جب انسان کا اپنے رب تعالی پر بھروسہ پوری طرح نہ ہو. ایک بھروسہ تو وہ ہے جو مجھے ہے کہ جب باتیں کرنے کی باری آئے گی تو میں آپ کے سامنے بڑی لمبی لمبی باتیں کروں گا کہ رب تعالیٰ پر میرا بھروسہ ایسا, رب تعالیٰ پر میرا بھروسہ ایسا, لیکن ذرا سی پریشانی آئی اور میں باولے لوگوں کی طرح دوڑا پھروں گا کبھی کہیں کہ کوئی دعا کر دے کہ میں اس ذہنی پریشانی سے نکل جاؤں. تو اپنے اس رویے پر مجھے غور کرنا ہوگا کہ یہ واقعتاً میرا بھروسہ اپنے رب پر ہے یا صرف لپ سروس ہے. تو جب اپنے رب پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی چیز پریشان کر نہیں پاتی, پھر ہم کمفرٹیبل رہتے ہیں اور یکسوئی ہوتی ہے. اور رب تعالیٰ پر بھروسہ قائم رکھنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. جیسے حکومتی سطح پر بھی یہ مثال کچھ سال پہلے دی جاتی تھی کہ گلاس کو ہم دو طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہ آدھا خالی ہے اور دوسرا طریقہ ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے. تو میرے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ میرا رب تعالیٰ صبح سے شام تک جو مجھ پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے وہ تمام نعمتیں جو میں نے صبح سے اب تک انجوائے کی ہیں میں اس کو یاد رکھوں, اور اگر ایک آدھ کوئی ایسی چیز ہے جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ رب تعالیٰ اتنی چیزیں دے رہا ہے, ایک نہ ملی تو کیا ہوا. تو ایک رویہ میرا یہ ہے, اس سے رب پہ بھروسہ بہت بڑھتا جاتا ہے آدمی. دوسرا بھروسہ یہ ہے کہ ہائے ہائے کرتا پھروں کہ یہ ایک میرا کام نہیں ہوا, اس سے نگیٹیوٹی آئے گی, और मैं परेशान होता रहूंगा। तो अगर हम अपने आप को मेंटली बहुत कंफर्टेबल रखना चाहते हैं तो सिर्फ उसको याद रखें कि हमें ये मिला है जो मिल गया, और उस पर मुतमईन हो जाएं कि चलिए अगर ये भी ना मिलता तो क्या होता, ये मिल गया तो बहुत काफी है मेरे लिए, तो मैं उस पर पॉजिटिव हो जाऊंगा, उसी में खुश हो जाऊंगा जितना मुझे मिला है। और अगर मैंने नजर उस पर रखी कि बहुत सी चीजें मिल गई, एक चीज नहीं मिली, और मेरी नजर उसी पर है कि ये नहीं मिला, तो मेरी जहनी परेशानी बढ़ती जाएगी। तो रब पर भरोसा हम पैदा कर लें ताकि मेंटली जनरल परेशानी उसमें भी हम कंफर्टेबल रहें, तो यकसुई पैदा हो जाएगी। इनके और कुछ सवाल हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे इस पे बात करेंगे। उस तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामुअलैकुम।